भूतल मल कलंका मुनि भी उपासित तीर्था सरस्वती हरतु दरितान अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानां शलाकयां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री परम गुरुवे नमः परम प्राचार्य गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं पाप प्रणाशकं पुण्य प्रकाशकं भव जीव मना प्रतिबोध कारकमिदं शास्त्रम श्री प्रवचन निर्देशिका नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचोनुसार मा साध्य गणिनी आरिकाशी ज्ञानमती मात्रा विरचितम श्रोतारा सावधानतया श्रण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मो अस्तु मंगलम। अहिंसामयी जैन शासन के छत्र छाया में रहते हुए हम सभी ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। भव्यात्माओं प्रवचन निर्देशिका नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और आप सब बहुत ही सुंदर विषय सम्यक दर्शन के विषय से परिचित हो रहे हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन क्या है, किसको होता है, कब होता है, ये सब बातें चिंतनीय हैं। आज इस पंचम काल में प्राणी को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं, ये आपने जाना कि चारों गतियों में सभी को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार निमित्तों को प्राप्त करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। देव गति में सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है और उससे पूर्व मनुष्य गति में बताया गया कि तीन कारणों से जो सम्यक की उत्पत्ति होती है उसमें सम्यक को संगोपात दो भागों में भी विभक्त किया, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज सम्यक दर्शन वो है जिसमें परोपदेश निमित्त नहीं होता, लेकिन जाति स्मरण और जिन बिंब दर्शन उसके अंदर भी निमित्त होता है। धर्मोपदेश माने दूसरे के उपदेश से सुनकर जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसको कहते हैं अधिगमज। निसर्गज माने निसर्ग माने स्वभाव से नेचुरली जो सम्यक दर्शन पहले भगवान के दर्शन किए हुए हैं या कोई जाति स्मरण हो गया पिछले भव का याद आ गया और उसके नित्य से सम्यक दर्शन हो गया तो वह निसर्गज कहलाता है। इसलिए कहा निसर्गज में भी इन निमित्तों को कि देखो निमित्त कितना प्रबल है। जो नेचुरल सम्यक दर्शन हुआ उसमें भी जाति स्मरण और जिन बिंब दर्शन निमित्त पड़ा, बस उसमें परोपदेश किसी गुरु का उपदेश निमित्त नहीं है, इसलिए उसका नाम निसर्गज हुआ। और अधिगमज का मतलब यह है कि धर्मोपदेश के निमित्त से हुआ सम्यक जो है वो अधिगमज कहलाता है। अब इस सम्यक दर्शन को जब हमने दो भागों में जान लिया निसर्गज और अधिगमज, मनुष्यों के अंदर उत्पन्न होने वाले सम्यक दर्शन के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया, लेकिन ये सभी गतियों में काम में आएगा, यानी सब गतियों में इस बात को जानना है। अब हम आते हैं चौथे देव गति में कि देव गति में सम्यक दर्शन किस प्रकार उत्पन्न होता है। पेज नंबर है 14, प्रवचन निर्देशिका पुस्तकें आप सबके पास पहुंच रही हैं। जिनके पास नहीं पहुंची हैं आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो जम्बूदीप हस्तिनापुर संपर्क करके जरूर मंगाएं प्रवचन निर्देशिका। निशुल्क पुस्तक जा रही है, कोई पुस्तक का शुल्क नहीं है, कोई भेजने का, कोई आपको प्राप्त करने का शुल्क नहीं है, बस केवल पढ़ना ही शुल्क है कि आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करिए, परीक्षा दीजिए, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो उसको मंगाइए, जब तक लोगों के पास नहीं पहुंची हमने पीडीएफ भी आपको आया है और पुस्तक तुरंत समाप्त हो चुकी थी, इसलिए छपने के लिए गई हुई है। अब निश्चित रूप से आ गई होंगी और आप लोगों को जरूर मिल जाएंगी। बोलते हैं कि स्टॉक में नहीं है, तो स्टॉक में नहीं है लेकिन छपने के लिए गई हुई है और शीघ्र ही वह मिल जाएंगी। तब तक आप पीडीएफ से काम चलाएं और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो जूम चैनल में नंबर दिया गया है उससे आप संपर्क करके पीडीएफ प्राप्त कर लें। देवताओं में सम्यक दर्शन कैसे? तो देवता में पर्याप्त मिथ्या दृष्टि देव अंतर मुहूर्त काल से लेकर ऊपर कभी भी प्रथम सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ चूंकि सम्यक दर्शन में प्रथमोपम सम्यक दर्शन जिसने जीवन में कभी नहीं प्राप्त किया था पहली बार प्राप्त कर रहे हैं सम्यक दर्शन, उसको कहते हैं प्रथम सम्यक प्रथमोपम सम्यक। और यह नियम से अंतर मुहूर्त तक ही होता है, अंतर मुहूर्त के बाद छूटता है। तो कह रहे हैं कि देव जब मिथ्या दृष्टि है उन्हीं को सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दृष्टि को क्या सम्यक दर्शन होगा? तो मिथ्या दृष्टि देव पर्याप्त अवस्था में अंतर मुहूर्त काल से लेकर ऊपर कभी भी प्रथम सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, अंतर मुहूर्त से पहले नहीं। देव चार कारणों से सम्यक तो उत्पन्न करते हैं। अभी तक तीन कारण आपने जाने थे, देवताओं में चार कारण है सम्यक दर्शन के। जाति स्मरण, धर्मोपदेश, जिन महिमा दर्शन और देवर्धि दर्शन। देवों की रिद्धि का दर्शन करके देख करके वह सम्यक दर्शन, तो चार कारण हुए। आपको अलग से मुख्य मुख्य चीजों में या तो आप पेंसिल से निशान लगा लें या फिर नोटबुक में प्रमुख चीजों को नोट करें कि देव गति में मिथ्या दृष्टि देवताओं को पर्याप्त अवस्था में चार कारणों में किसी कारण के प्राप्त होने पर सम्यक दर्शन हो सकता है। तो जिन महिमा दर्शन को लिया तो यहाँ शंका हो रही है, प्रश्न हुआ है, यहाँ जिन बिंब दर्शन को कारण रूप से क्यों नहीं कहा? जिन बिंब माने जिन भगवान की प्रतिमा, बिंब माने होता है प्रतिमा, और यहाँ जिन महिमा कह दिया है। तो तुरंत प्रश्न उठ गया कि जिन बिंब दर्शन को यहाँ पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण क्यों नहीं कहा? उसका समाधान किया, क्योंकि जिन बिंब दर्शन का जिन महिमा दर्शन में ही अंतर्भाव हो जाता है, कारण है कि जिन बिंब के बिना जिन महिमा की उत्पत्ति व्यवस्था नहीं बनती। जब जिन बिंब होंगे तभी तो जिन महिमा होंगे, भगवान के प्रतिमा मंदिर में विराजमान है तभी रथ यात्रा निकालेंगे, तभी पालकी यात्रा निकालेंगे या उनकी महिमा का वखान करेंगे। तो जिन बिंब दर्शन अलग से नहीं कहा है, जिन महिमा दर्शन में ही जिन बिंब दर्शन समाविष्ट हो जाता है। फिर शंका किया कि आपने ऐसा कहा है तो स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और परिनिष्क्रमण रूप जिन महिमाएं जिन बिंब के बिना की गई देखी जाती हैं, इसलिए जिन महिमा दर्शन में जिन बिंब दर्शन का अविनाभाव नहीं है। स्वर्गावतरण माने गर्भ कल्याणक में, जन्म कल्याणक में और दीक्षा कल्याणक में, तब तो भगवान नहीं रहते, तब तो भगवान रूप से उनकी प्रतिमाएं विराजमान नहीं होती हैं। तो उनमें जिन बिंब की व्यवस्था नहीं देखी जाती, तो महिमा दर्शन में जिन बिंब दर्शन का अविनाभाव नहीं, माने कि जिन बिंब को अलग कहो और जिन महिमा दर्शन को अलग कहो। तो समाधान क्या? ऐसा नहीं है। ये सारी शंका समाधान सखंडागम की धवला टीका के अंदर आपको मिलेंगे, प्रथम पुस्तक में ही मिल जाएंगे। और सखंडागम की सिद्धांत चिंतामणि टीका जो पूज्य गणी ज्ञानमती माताजी ने इस युग में लिख करके कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके अंदर भी इन बातों का बहुत सुंदर विवेचन किया गया कि ये तीनों कल्याणक जो हैं उनमें भी भावी जिन बिंब, क्योंकि वो जिन बिंब के रूप में परिवर्तित होने वाले हैं, जिनका गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, दीक्षा कल्याणक हुआ, उनका केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक तो होना ही होना है, इसलिए उनमें भावी भगवंतों का बिंब यानी उनकी प्रतिमाओं का दर्शन, भावी माने भविष्य काल में वे भगवान बनने वाले हैं तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिमाएं भी बनेंगी, तो इसलिए उनका भावी जन्म दर्शन उसमें पाया जाता है। अथवा इन महिमाओं में उत्पन्न होने वाला प्रथम सम्यक जिन बिंब दर्शन निमित्तक नहीं है किंतु जिन गुण श्रवण निमित्तक है। देखो जिन बिंब दर्शन नाम से इसमें उल्लेख नहीं किया इसलिए इस कारण को, क्योंकि यहाँ जिन बिंब दर्शन की बजाय जिन महिमा यानी पांचों कल्याण के निमित्त से जिनेन्द्र भगवान की महिमा जानी जाती है कि इस प्रकार से पांच कल्याण को प्राप्त करके और देवता इंद्रों के द्वारा जिनके कल्याणक मनाए गए हैं ऐसे भगवान ही जिन बिंब का रूप धारण करते हैं, इसलिए इससे भी जिन महिमा से भी सुन करके उसको जिन गुण श्रवण कहा, जिन गुण श्रवण निमित्त ये जिन महिमा दर्शन है कि उनके गुणों कि भाई भगवान क्यों पूजे जाते हैं, उनको मति श्रुतावधि ज्ञान होते हैं, वे कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनके कल्याण को देवता आते हैं, उन्हें कर्म को क्षय करना होता है, कर्म को नष्ट करना होता है, और जो कर्म को नष्ट कर लेते हैं कर्मों को जीत लेते हैं वही जिन कहलाते हैं, और जब जिन कहलाते हैं तो उनके बिंब बनाए जाते हैं तो जिन बिंब बन जाते हैं, और उन जिन बिंबों का दर्शन जिन बिंब दर्शन कहलाता है, और जब जिन बिंब बन गए तो उनका विनय और अभिनय साक्षात भगवान के विनय और अभिनय का फल देता है। देखो अंजना ने पूर्व भाव की पर्याय में एक भगवान की प्रतिमा को बावड़ी में डाल दिया था, उसको अपनी शौक से ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई, वो सोचती है कि ये भगवान की पूजा न कर पाए तो उसने उठा करके चैताली के भगवान को बावड़ी में डाल दी। तुरंत वहां पर एक आरिका माता जी आ गईं, उन्होंने जब जाना तो तुरंत उस कनकोदरी रानी थी उसको बुला करके कहा कि भाई आप अपने नरक का द्वार क्यों खोल रही हैं, ये भगवान ये पत्थर नहीं है, ये केवल धातु नहीं है, साक्षात भगवान है, और इनके विनय से पुण्य अविनय से पाप लगता है। एकदम तुरंत वो कांप गई कि क्या मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तुरंत उसने बावड़ी से निकलवा करके प्रतिमा को जहां तहां विराजमान किया, आरिका माता जी प्रायश्चित लिया, लेकिन उस समय कटु परिणामों से बहुत संक्लिष्ट परिणामों से उसने ऐसा कर्म कर लिया, आगे जाकर अंजना की पर्याय में 22 साल तक पति का वियोग सहन करना पड़ा। जब वो कहती थी मैं किसी माता पुत्र को किसी पति पत्नी को अलग नहीं कराया, मुझे किस कर्म का फल मिल रहा है, तब एक मुनिराज ने बताया था दिव्य ज्ञानी मुनिराज ने कि बेटी तूने पूर्व जन्मों में इस प्रकार से जिन बिंब का अपमान किया था, जिन प्रतिमा का अपमान किया था, उसी के फल स्वरूप तुझे पति से अलग रहना पड़ रहा है और तुझे कलंक लग रहा है, तो अब अच्छे से समता के साथ में उस कष्ट सहन करके अब समय पूरा होने वाला है तो आपको पति का मिलन होने वाला है। ऐसे ऐसे कहानियां जान करके आपको ये जानना है कि जिन बिंब का दर्शन सम्यक दर्शन को उत्पन्न करा सकता है, जिन बिंब का अपमान नरक आदि दुर्गतियों में ले जा सकता है। इसलिए कहा कि देवताओं में जब जिन महिमाओं से उत्पन्न होने वाला जो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है वो जिन बिंब दर्शन निमित्तक नहीं है, वो जिन गुण श्रवण निमित्तक है कि भगवान के गुणों का श्रवण करके और कभी हम भी ऐसे प्राप्त करें ऐसा भाव आता है, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। आगे इस प्रकरण के अंतर्गत प्रश्न हुआ, शंका की गई है कि देवी दर्शन का जाति स्मरण में समावेश क्यों नहीं होता, ये चार कारण कहे, तो इन प्रश्नों को करके अपने विषय को परिमार्जित जाता है, मांजा जाता है, जैसे कोई बर्तन मांज मांज करके उसमें चमक लाई जाती है, उसी प्रकार से बार बार पूछ करके अच्छे से प्रश्न करके उसके उत्तर को बिल्कुल मन में जब बिठा लिया जाता है तो वो कहते हैं कि परिमार्जित ज्ञान होता है। तो इन प्रश्नों को आचार्य महाराज जिन्होंने प्रश्न उठा करके उत्तर दिया उनको तो सब मालूम ही था, लेकिन ये मालूम था कि ऐसे ऐसे प्रश्न लोगों के मन में आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने आज से पहले ही उन प्रश्नों को उठा करके स्वयं उनके उत्तर दिए हैं। देवर्दी दर्शन का जाति स्मरण में समावेश क्यों नहीं किया, जैसे देवर्दी दर्शन का मतलब दूसरे देवताओं की विधियों को देख करके, कुछ लोग जलते हैं इन्हें इतना वैभव मिल गया, इनके पास तो इतना पैसा गया और हमारे पास कुछ नहीं है, देवताओं में भी होता है, वहां कोई धन संपत्ति नहीं है लेकिन उनका वैभव बहुत बड़ा है। बहुत सारे देवता हैं जो उनकी सेवा करते हैं, लेकिन कुछ के पास में ऐसा होता है कम संपत्ति यानी कम वैभव होता है, उनको बड़े देवताओं के या इंद्र के कहने कभी हाथी बनना पड़ गया, कभी घोड़ा बनना पड़ गया, तो बेचारे बड़े दुखी हो जाते। देखो ये तो इतने बड़े हैं और मैं भी देवता हूं, मुझे आदेश दे दिया, मुझे हाथी बनना पड़ रहा है, इनका वाहन बनना पड़ रहा है। तो दूसरों की रिद्धि उनके वैभव को देख करके भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है कि मैं भी पुण्य करूं तो मुझे भी इनके समान रिद्धि मिल जाएगी, वैभव मिल जाएगा। तो कह रहे हैं इस रिद्धि का जाति स्मरण में, जाति पूर्व जन्म के जाति स्मरण से भी हो सकता है, तो इसको उसमें अंतर्भूत कर दो। कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपनी अणिमादिकियों को देखकर जब ये विचार उत्पन्न होता है कि ये रिद्धियां जिन भगवान उपदिष्ट धर्म के अनुष्ठान से उत्पन्न हुई हैं, तब प्रथम सम्यक्ति की प्राप्ति जाति स्मरण निमित्त कही जाती। क्या हुआ, एक एक चीज को ध्यान से सुनना, अपनी रिद्धियों को देखकर विचार उत्पन्न होता है कि मैंने ये रिद्धियां भगवान के उपदेश से, भगवान के उपदिष्ट धर्म के कारण प्राप्त की हैं, वो तो जाति, उसके अंदर तो जाति स्मरण हो सकता है। इसमें जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ तो वो रिद्धि का दर्शन जाति स्मरण निमित्त, लेकिन दूसरों की रिद्धि देख करके अब कोई तो जलने लगे और कोई सोचते हैं मैंने भी पुण्य किया होता, मैंने भी व्रतों का पालन किया होता, मैंने भी खूब भगवान की भक्ति की होती तो मुझे भी मिलता। तब दूसरों से जलन नहीं होती, उस समय केवल ये भाव होता है मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी खूब भगवान के कल्याणकों को देखूंगा, मैं भी गुरु के पास जाऊंगा, मैं रोज अभिषेक करूंगा ताकि मुझे भी ऐसी संपत्ति प्राप्त हो। तो ये जब मित्त बनता है दूसरों की रिद्धि को देख करके, सौधर्म इंद्र आदि देवों की महारिद्धियों को देखकर ये ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये रिद्धियां सम्यक दर्शन से संयुक्त संयम पालन करने के फल से प्राप्त हुई हैं, किंतु मैं सम्यक्त से रहित द्रव्य संयम के फल से इन वाहन आदि नीच देवों में उत्पन्न हुआ हूं, तब प्रथम सम्यक्ति का ग्रहण देवर्दी दर्शन निमित्तक होता है। समझ गए ना कि दे उन्हें वाहन पड़ा तो एकदम मन के अंदर आया मैं भी पुण्य करूं और मैं भी ऐसे रिद्धिधारी देव बन जाऊं, मुझे आज इनका वाहन करना पड़ रहा है। इससे जाति स्मरण और देवर्दी दर्शन ये दोनों कारण एक नहीं हो सकते। देवर्दी दर्शन दूसरे देवों को देख करके, जाति स्मरण अपनी रिद्धि के निमित्त से ही जो प्राप्ति हुई है उसमें ही भगवान की भक्ति को निमित्त मानना, तथा जाति स्मरण वहां पर उत्पन्न होने के प्रथम समय से लगाकर अंतर मुहूर्त काल के भीतर ही होता है। सुन लो ठीक से, देवताओं में जो जाति स्मरण होता है तो वहां पर उत्पन्न होने के प्रथम समय, जैसे उत्पन्न हुए तुरंत से लेकर अंतर मुहूर्त के अंदर हो जाता है, जाता है उन्हें याद आ जाता है पूर्व मैं कहाँ था, मैं कैसे यहाँ आया हूँ। और देवर्दी दर्शन उत्पन्न होने के समय से अंतर मुहूर्त काल के पश्चात होता है, 48 मिनट के बाद जब वो नहा धो करके अपना आराम से भगवान के दर्शन कर लेते हैं, अंतर मुहूर्त के पश्चात उन्हें और तमाम देवों की रिद्धियों को देखने का अवसर मिलता है। जब अवसर मिलता है तब देवर्दी दर्शन होता कि इनके पास इतनी संपत्ति, इनके पास इतनी संपत्ति, इनके पास ऐसा मैं ऐसा, तब वो अंतर मुहूर्त काल के पश्चात होता है, इसलिए उन दोनों कारणों में एक समानता नहीं है। अब आप मान लेना है कि देवता जिसको भी देवता बनना है, चाहे तिर्यंच गति से जाए चाहे मनुष्य गति से, केवल अंतर मुहूर्त के अंदर जाकर उनका शरीर बन जाता है, चाहे वो नारकी हो चाहे देवता हो। जैसे मनुष्य और तिर्यंचों को अपनी माँ के गर्भ में रहना पड़ता है, ऐसे देवताओं को नहीं रहना पड़ता। देवताओं के यहाँ उपपाद शैया होती है और वहां पर जीव अंतर मुहूर्त के अंदर ही 16 साल के नव युवक के समान एकदम उठ करके बैठ जाता है और दूसरे देवता जाकर उसका स्वागत करते हैं, पुनः उसे सारी चीजें स्वर्ग की व्यवस्था बता देते हैं, उसको स्नान कराते हैं, उसको अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कराने ले जाते हैं और उसके बाद से फिर उसकी लाइफ शुरू हो जाती है। तो ये देवताओं की बात है, चार कारण बताए गए हैं। इन चार कारणों को कहा है भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। प्रथम स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक के देवों में ये चार कारण रहते हैं। एक एक शब्द प्रवचन निर्देश का बिल्कुल रट लेने लायक है। मैं कोई भी शब्द छोड़कर या कोई भी वाक्य छोड़कर आपको कैसे बताऊंगी कि केवल इसका सार समझ लेना। हर पंक्ति सार है। तो किनमें ये चार कारण होते हैं? भवनवासी देवों में, व्यंतर देवों में, ज्योतिषी देवों में और कल्पवासी देवों में कारण होते हैं 12वें स्वर्ग तक। 12वें स्वर्ग से आगे आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इन चार स्वर्गों के देवों में देवर्दी दर्शन को छोड़कर शेष तीन कारण ही होते हैं। अब देवर्दी दर्शन को छोड़कर शेष तीन कारण क्यों होते हैं, आगे विषय इसका चलाया जाएगा, तब आपको मालूम होगा। अब आपने जान लिया है चारों गतियों की सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण। आज के स्वाध्याय का सार यही समझना कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं, तो हमें अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखना है और हमेशा कहीं भी किसी गति में जाने का कोई निदान बंद ना करें और अपने आप अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखें। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में आप नहीं जाएंगे और समझो कि कल्पवासी देवों में जाकर उत्पन्न होकर के भी अपने सम्यक दर्शन को रखना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए तो का ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिले जाए। चलो दास सांग मई जिनवाणी माता।